नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट थ्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, मायरा ई. लूरिंग की पुस्तक कंटेंट क्रिएटर हाउ टू स्टैंड आउट अमंगस्ट द नॉइज, डिजिटल कंटेंट निर्माण पर केंद्रित एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। उपलब्ध विश्वसनीय विवरण के अनुसार यह पुस्तक उस ऑनलाइन परिवेश को संबोधित करती है जहाँ ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और अन्य डिजिटल प्रारूपों की अत्यधिक मात्रा के बीच किसी नए या उभरते क्रिएटर के लिए ध्यान पाना कठिन है। इसका उद्देश्य केवल अधिक सामग्री प्रकाशित करने की सलाह देना नहीं, बल्कि ऐसी सामग्री बनाने की दिशा दिखाना है जो निर्धारित दर्शक वर्ग के लिए प्रासंगिक और आकर्षक लगे। पुस्तक के परिचयात्मक विवरण में विशिष्ट रचनात्मक आवाज खोजने, विभिन्न कंटेंट प्रारूपों को समझने और व्यावहारिक उदाहरणों व लागू की जा सकने वाली तकनीकों के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति बेहतर बनाने पर जोर बताया गया है। इसे महत्वाकांक्षी कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया प्रबंधकों के लिए लिखा गया प्रतीत होता है। चूंकि पुस्तक के विस्तृत अध्याय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसका विश्लेषण केवल इन्हीं सत्यापित उच्च स्तरीय विषयों तक सीमित है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, भीड़भाड़ वाले ऑनलाइन परिवेश में अलग पहचान की आवश्यकता। पुस्तक का केंद्रीय प्रश्न यह है कि सामग्री की बहुतायत वाले डिजिटल वातावरण में कोई क्रिएटर पहचान कैसे बनाए। उपलब्ध विवरण इसे सीधे तौर पर ऑनलाइन परिदृश्य में अलग दिखने की चुनौती से जोड़ता है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल माध्यम में प्रकाशन की बाधा कम होने से सामग्री बनाना आसान हुआ है, लेकिन दर्शकों का सीमित ध्यान प्राप्त करना अधिक कठिन हुआ है। ऐसे में केवल नियमित पोस्टिंग अपने आप में पर्याप्त अंतर पैदा नहीं करती। किसी सामग्री का विषय, प्रस्तुति और दर्शक के लिए उसकी उपयोगिता, तीनों यह तय करते हैं कि वह अनदेखी रह जाएगी या याद रखी जाएगी। पुस्तक का व्यावहारिक रुझान संकेत देता है कि अलग दिखने को केवल चमकदार उत्पादन या तात्कालिक रुझान से नहीं समझना चाहिए। अधिक सार्थक अर्थ में यह स्पष्टता का प्रश्न है कि क्रिएटर किसके लिए बोल रहा है और उसकी सामग्री उस व्यक्ति की किसी रुचि, समस्या या जिज्ञासा से कैसे जुड़ती है। यह दृष्टि खासकर शुरुआती क्रिएटर के लिए उपयोगी है क्योंकि यह प्रतिस्पर्धियों की अंधी नकल के बजाय अपनी सामग्री की प्रासंगिकता पर ध्यान ले जाती है। हालांकि उपलब्ध जानकारी से किसी निश्चित प्रतिस्पर्धी विश्लेषण पद्धति का दावा नहीं किया जा सकता। पुस्तक का घोषित उद्देश्य शोर के बीच सार्थक उपस्थिति बनाने पर केंद्रित है। दूसरा, निर्धारित दर्शक वर्ग के साथ प्रतिध्वनि बनाने वाली सामग्री। पुस्तक के उपलब्ध सार में आकर्षक सामग्री के साथ निर्धारित दर्शक वर्ग तक पहुंच और उसके साथ प्रतिध्वनि बनाने की बात आती है। यह विषय कंटेंट निर्माण को केवल आत्म अभिव्यक्ति नहीं बल्कि संप्रेषण की प्रक्रिया के रूप में रखता है। प्रतिध्वनि का अर्थ हर व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं है। इसका अर्थ है कि सामग्री की भाषा, विषय और उदाहरण उन लोगों के अनुभवों या अपेक्षाओं से मेल खाएं जिनसे क्रिएटर संबंध बनाना चाहता है। उदाहरण के लिए, किसी विषय की उपयोगिता तभी स्पष्ट होगी जब उसे दर्शक के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए। इसी कारण दर्शक वर्ग की समझ सामग्री के विचार चयन से लेकर उसके प्रारूप और स्वर तक प्रभाव डालती है। पुस्तक की स्थिति एक शुरुआती मार्गदर्शिका की है, इसलिए इसका उपयोगी संकेत यह है कि क्रिएटर को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी सामग्री किसके लिए प्रासंगिक है। यह स्पष्टता सामग्री को अधिक केंद्रित बनाती है और बिखरे हुए संदेशों की संभावना घटाती है। फिर भी उपलब्ध सार्वजनिक स्रोत पुस्तक की किसी विस्तृत ऑडियंस रिसर्च प्रक्रिया, मापदंड या प्लेटफॉर्म विशिष्ट रणनीति की पुष्टि नहीं करते, इसलिए इसकी विषय वस्तु को सामान्य लागू सिद्धांत के रूप में समझना उचित है, न कि किसी प्रमाणित विश्लेषणात्मक ढांचे के रूप में। तीसरा, विशिष्ट रचनात्मक आवाज को पहचानना और बनाए रखना। उपलब्ध विवरण के अनुसार पुस्तक क्रिएटर को अपनी विशिष्ट आवाज खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। कंटेंट के संदर्भ में आवाज केवल लिखने की शैली या बोलने के लहजे तक सीमित नहीं होती। इसमें विषय चुनने का दृष्टिकोण, किसी मुद्दे को समझाने का तरीका, उदाहरणों का चयन और दर्शक के साथ संवाद का स्वर भी शामिल हो सकता है। जब सामग्री का व्यक्तित्व अस्पष्ट होता है, तब वह आसानी से समान विषयों वाली अनेक पोस्टों में खो सकती है। इसके विपरीत, एक पहचानने योग्य दृष्टिकोण दर्शक को यह समझने में मदद करता है कि इस क्रिएटर से किस तरह की उपयोगिता या अनुभव की अपेक्षा की जा सकती है। यह विचार पुस्तक के अलग दिखने वाले उद्देश्य से सीधे जुड़ा है, क्योंकि विशिष्टता को केवल बाहरी सजावट से नहीं, संदेश की निरंतर पहचान से जोड़ा गया है। व्यावहारिक स्तर पर इसका अर्थ किसी लोकप्रिय शैली की प्रतिलिपि बनाना नहीं, बल्कि अपनी रुचि, ज्ञान और संवाद विधि के अनुरूप सामग्री विकसित करना है। ऐसी आवाज समय के साथ अधिक विश्वसनीय लग सकती है, यदि वह बार बार बदलते रुझानों के पीछे अपनी मूल दिशा न खो दे। फिर भी विशिष्ट आवाज का अर्थ कठोर एकरूपता भी नहीं है। अलग अलग प्रारूपों में बदलाव संभव है, बशर्ते मूल दृष्टिकोण और दर्शक के प्रति वादा स्पष्ट रहे। पुस्तक के सार्वजनिक विवरण में यही संतुलन पहचान और प्रासंगिकता का साझा आधार प्रमुख संकेत के रूप में उभरता है। चौथा, विभिन्न कंटेंट प्रारूपों की समझ और चयन। पुस्तक के विवरण में विभिन्न कंटेंट प्रारूपों को समझने का उल्लेख है। यह सामग्री निर्माण का महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि एक ही विचार को लिखित पोस्ट, दृश्य सामग्री, वीडियो या अन्य डिजिटल रूप में अलग ढंग से ग्रहण किया जा सकता है। प्रारूप को केवल तकनीकी चुनाव मानना पर्याप्त नहीं है, वह संदेश की गति, विस्तार, भाव और दर्शक की भागीदारी को भी बदलता है। किसी जटिल विचार को विस्तार से समझाने के लिए लिखित प्रारूप उपयुक्त हो सकता है, जबकि किसी दृश्य प्रक्रिया या त्वरित प्रदर्शन के लिए दृश्य माध्यम अधिक सहज हो सकता है। इसलिए प्रारूप का चयन विषय और दर्शक की आवश्यकता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। पुस्तक का घोषित लक्ष्य कंटेंट निर्माण की जटिलताओं को सरल बनाना है, और प्रारूपों की समझ इसी लक्ष्य का व्यावहारिक हिस्सा लगती है। इससे नए क्रिएटर ये देख सकते हैं कि उन्हें हर उपलब्ध माध्यम में एक साथ उपस्थित होने की बाध्यता नहीं है। बेहतर प्रश्न यह है कि कौन सा माध्यम उनके संदेश, संसाधनों और दर्शक की अपेक्षा के लिए सार्थक है। उपलब्ध स्रोत पुस्तक द्वारा सुझाए गए किसी विशेष प्लेटफॉर्म, प्रकाशन आवृत्ति या उत्पादन उपकरण की पुष्टि नहीं करते। अतः इसका मुख्य पाठ यही समझा जा सकता है कि प्रारूप का उपयोग उद्देश्यपूर्ण हो, न कि केवल इसलिए कि वह वर्तमान में लोकप्रिय है। विषय और माध्यम का यह मेल सामग्री की स्पष्टता तथा प्रभाव दोनों को मजबूत कर सकता है। अंत में व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से डिजिटल जटिलता को सरल बनाना, पुस्तक के उपलब्ध परिचय में गहन सलाह, व्यावहारिक उदाहरण और सिद्ध तकनीकों का उल्लेख मिलता है। इससे इसका स्वर अत्यधिक सैद्धांतिक होने के बजाय अनुप्रयोग केंद्रित दिखाई देता है। कंटेंट निर्माण में सामान्य सलाह, जैसे बेहतर सामग्री बनाइए, अक्सर उपयोगी नहीं होती जब तक उसे निर्णयों में नहीं बदला जाए। व्यावहारिक उदाहरण किसी क्रिएटर को यह समझने में सहायता कर सकते हैं कि आकर्षक विचार, स्पष्ट संदेश और चुना हुआ प्रारूप वास्तविक सामग्री में कैसे दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह डिजिटल दुनिया की जटिलता को सरल बनाने का उद्देश्य शुरुआती लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें एक साथ विषय चयन, प्रस्तुति, दर्शक की रुचि और ऑनलाइन उपस्थिति जैसे कई प्रश्नों से जूझना पड़ता है। पुस्तक का संभावित योगदान इन प्रश्नों को प्रबंधनीय चरणों में देखने की मानसिकता देना है। यह दृष्टि कंटेंट को एक बार की रचनात्मक घटना के बजाय विचार, निर्माण और संवाद की सतत प्रक्रिया मानने में मदद करती है। साथ ही व्यावहारिकता का अर्थ सार्वभौमिक नुस्खा नहीं है। जो तकनीक एक दर्शक वर्ग या माध्यम में काम करे, वह दूसरे में वैसी ही प्रतिक्रिया नहीं देगी। इसलिए पुस्तक की उपयोगिता उसके सुझावों को संदर्भ के अनुसार परखने में है। सार्वजनिक जानकारी किसी विशिष्ट उदाहरण, चरणबद्ध मॉडल या परिणाम संबंधी दावे को सत्यापित नहीं करती, इसलिए इनके बारे में अधिक विस्तृत दावा करना उचित नहीं होगा। निष्कर्ष में कंटेंट क्रिएटर, हाउ टू स्टैंड आउट अमंगस्ट द नॉइज, आज द ऑन पॉर्ट पेंटिस्ट पे योग्यम, उन पाठकों के लिए सबसे प्रासंगिक लगती है जो डिजिटल सामग्री बनाना शुरू कर रहे हैं या अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को अधिक स्पष्ट दिशा देना चाहते हैं। ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया प्रबंधक और स्वतंत्र क्रिएटर इससे विशेष रूप से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि पुस्तक का सार्वजनिक रूप से वर्णित फोकस सामग्री को दर्शक वर्ग के लिए प्रासंगिक बनाने, अपनी रचनात्मक आवाज पहचानने और अलग अलग प्रारूपों को समझने पर है। इसका व्यावहारिक लाभ यह हो सकता है कि पाठक सामग्री निर्माण को केवल लगातार पोस्ट करने के काम के रूप में न देखें, बल्कि संदेश, दर्शक और प्रस्तुति के बीच संबंध के रूप में सोचें। यह बदलाव अनावश्यक नकल और बिखरे हुए कंटेंट प्रयासों को कम करने में सहायक हो सकता है। समान श्रेणी की कई पुस्तकों के मुकाबले इसका संभावित अंतर इसके सीधे शुरुआती अनुकूल विषय निर्धारण में है। यह व्यापक डिजिटल जगत की जटिलताओं को सरल करने और क्रिएटर की विशिष्ट आवाज के महत्व को साथ रखने का दावा करती है। फिर भी पाठक को यथार्थवादी अपेक्षा रखनी चाहिए। उपलब्ध सार्वजनिक सामग्री से किसी उन्नत प्लेटफॉर्म विश्लेषण प्रणाली, विस्तृत विपणन मॉडल या आय वृद्धि की पद्धति की पुष्टि नहीं होती, इसलिए इसे तकनीकी विशेषज्ञता की पुस्तक के बजाय आधारभूत कंटेंट रणनीति की मार्गदर्शिका के रूप में पढ़ना अधिक उचित है। इसकी उपयोगिता तब बढ़ेगी जब पाठक इसके सामान्य सिद्धांतों को अपने विषय, संसाधनों और वास्तविक दर्शकों के संदर्भ में लागू करके परखें। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मायरा ई लोरिंग, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।